ओम शांति। रोज साकार मुरली जो हम सुनते हैं बाबा की, जिसमें हम रिवाइज कोर्स की मुरलियां सुन रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले अव्यक्त बाप दादा की मुरली में ये शब्द थे कि अब समय है अंतिम कोर्स का, रियलाइजेशन कोर्स। क्या होता है ये अंतिम रियलाइजेशन कोर्स? आइए इसी विषय पर हम कुछ ज्ञान बिंदु प्राप्त करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है बहरामपुर से पधारे हुए आदरणीय मंजू बहन जी। हम सभी आपका सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। 1971 में आप मधुबन महायज्ञ में समर्पित हुए। पिछले 25 साल से आप उड़ीसा में बहरामपुर में सेवाएं दे रहे हैं। राजयोग शिविर में आप बहुत निपुण शिक्षिका है। महिला विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर भी है। तो आइए हम क्लास सुनते हैं मंजू बहन द्वारा, अंतिम कोर्स रियलाइजेशन कोर्स।
ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने जब इस धरा पर अवतरित होकर के हम सभी को अपने स्वरूप का और समय का ज्ञान दिया, जिसका आभास या अनुभव हमने बाबा के प्रथम साक्षात्कार से किया। मैं कौन हूँ वो बाबा को पता चला, ब्रह्मा बाबा को। और आने वाला समय महाविनाश का है, और आने वाली दुनिया स्वर्ग होगी, वो भी बाबा को प्रथम साक्षात्कार से पता चला। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम कोई भी उस समय नहीं थे, परंतु आज जो समय से हम गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, वो समय उस समय की हमें स्मृति दिलाता है। हम भले ही उस समय नहीं थे, लेकिन जो बाबा ने देखा, ब्रह्मा बाबा ने, और जो शिव बाबा ने कहा, आज उस समय का हम अनुभव कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कैसे अभी अंतिम घड़ियां के बीच हम सब गुजर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक या मानसिक स्तर की परिस्थितियां हमारे पास आती हैं, लेकिन उन सब परिस्थितियों और हलचल को देखते हुए हमें अपना बाबा का दिया हुआ वह कार्य, वह अनुभव कराया हुआ कि बच्चे लास्ट में सब कुछ होगा, लेकिन तुम ऐसी अचल अडोल स्थिति में रहेंगे, जो कुछ भी होते हुए तुमको यहाँ का कुछ पता नहीं चलेगा, और बाबा तुम्हें ऐसे इस दुनिया से ले जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और औरों को तुमसे साक्षात्कार होगा। ये सब जो प्रथम महावाक्य है, वो आज भी हम सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आज से 76 वर्ष पूर्व और आज के दिन के बीच का जो हमारा ये संगम का सुहावना समय, इसको कहेंगे वो पास्ट हुआ है। लेकिन पास्ट हुआ शब्द मैं कभी नहीं कहती, मैं कहती वो भी सुहावना समय चल रहा है। प्यारे बाबा ने जैसे हमको पहले वर्तमान, भविष्य और भूत का ज्ञान दिया, वैसे ही त्रिमूर्ति का ज्ञान भी दिया, तीनों कालों का ज्ञान भी दिया, तीनों लोकों का ज्ञान भी दिया। लेकिन इसके साथ साथ तीन शब्द कोर्स के बारे में हमने अपनी दादियों से सुने हैं, कईयों ने वो तीनों कोर्स किए हैं, कई दो कर रहे हैं और कई तो फिर उस समय आए हैं कि जब तीनों कोर्स का सार रूप में या कहेंगे सेंस रूप में उनको मिल जाता है। तो सबसे पहले पहले जब इस यज्ञ की स्थापना हुई और बाबा में बाबा ने प्रवेश किया, हम उस कोर्स को कहते हैं रियल कोर्स, क्योंकि जो आज बाबा सुना रहे हैं वो किसी को भी मालूम नहीं था कि बाबा क्या सुनाएंगे। जिसके लिए प्यारे बाबा ने हमको सुनाया है कि बच्चे गीता साकार ब्रह्मा बाबा के समय पूरा हो गया। गीता का ज्ञान जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा दिया, अर्थात जो कुछ भी बाबा को ज्ञान का, समय का, योग का, संबंधों का या जितनी हमारी पौराणिक बातें हैं जिनको बाबा के ज्ञान से राइट सिद्ध करना है, जैसे सृष्टि चक्र का रिपीटेशन पीरियड है 5000 वर्ष, अर्थात कल्प की आयु 5000 वर्ष है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, निराकार परमात्मा शिव है। इस प्रकार के जो गुह्य ज्ञान के बिंदु हैं, वो बाबा ने सबसे पहले, जो सबसे पहले है रियल कोर्स जिसको कहा जाए, उस कोर्स में हम सबको सुना दिया। लेकिन उस रियल कोर्स के अंदर ही आप अगर गहराई से जाकर के देखें तो रिवाइज कोर्स भी साथ साथ चल रहा था साकार बाबा के समय से ही। आप कहेंगे बाबा साकार में है, रिवाइज कैसे हो रहा था? तो आपने कई बार बाबा की मुरलियों में सुना होगा कि बाबा एक पॉइंट को, आत्मा की पॉइंट हो चाहे योग की पॉइंट हो या किसी को समझाने की पॉइंट हो, बाबा हमेशा कहते मैं वही बात बार 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 क्यों रिपीट करता हूँ, क्यों रिवाइज करता हूँ? क्योंकि जिन्होंने सुना है वो भूल गए हैं और जो नए आए हैं उनको भी तो सुनाऊंगा ना। तो देखा जाए प्यारे बाबा ने अपने समय से ही रियल कोर्स के बाद मुरलियों द्वारा ही आत्मा का अनुभव कैसे करो, योग में सर्व संबंधों का सुख बाबा से कैसे लो, वो आत्मा कैसे बाबा पर बलिहार जाए कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसके लिए कितनी रीति से, अलग अलग रीति से बाबा ने बार बार उन्हीं बातों को रिवाइज करके और फिर रियलाइज कराया है। आप कहेंगे साकार बाबा ने रियलाइज कैसे कराया? प्रैक्टिकल मिसाल मैं आपको फरवरी और जनवरी मास की मुरलियों से, इसी वर्ष जो हम साकार बाबा की मुरलियां सुनते हैं, उन मुरलियों में आपने देखा होगा आधा पेज के बाद फिर मुरली का गीत बजता है। अब क्या जो आधा पेज मुरली के गीत से पहले हमने सुना वो मुरली नहीं क्या? मुरली में सुना है मुरली ही है, लेकिन वो क्या चीज है जो ब्रह्मा बाबा ने अमृत वेले के योग से, या जो ब्रह्मा बाबा का पहले दिन से कई दिनों से बच्चों के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए संकल्प चलता था, वो संकल्प बाबा पहले क्लास में आते ही जो उन्होंने खुद रियलाइज किया वो बच्चों को रियलाइज करा देता था। उसके बाद फिर गीत बज के जैसे शिव बाबा की पद्रमणि ब्रह्मा बाबा में होती है और बच्चों को मुरली सुनाते हैं बाबा, ठीक उसी प्रकार से मुरली विधिवत शुरू होती और हम सब बाबा की मुरली सुनते हैं। तो अगर हम ध्यान से मुरलियों को, साकार बाबा की मुरलियों को ध्यान से पढ़ें, तो मुझे दीदी की बात, बड़ी दीदी की एक बात सदा याद आती है। हम कभी कभी दीदी को बोलते थे, दीदी अव्यक्त मुरली बहुत अच्छी लगती है। दीदी बोली, अव्यक्त मुरली आई कहां से? कहां से आई? बाबा अव्यक्त हुआ कहां से? व्यक्त मुरलियों से बाबा अव्यक्त हुआ। अव्यक्त बाबा जो अव्यक्त हुआ, वही अव्यक्त मुरली चला रहा है दीदी हमेशा। तो जो साकार बाबा की मुरलियों की गहराई में ना जाकर के उसके रहस्य को, उसकी शक्ति को, उसकी नवीनता को, उसकी स्पष्टता को अनुभव ना कर सके, वो अव्यक्त बाबा की मुरली भी उसके कानों तक रहेगी लेकिन उसके मन प्राण में जाकर के, दिल में जाके समा जाए और वो स्वरूप बन जाए, वो भी नहीं होगा, शब्दों तक रह जाएगा। तो देखा जाए, साकार बाबा की मुरली ही अपने आप में रियल कोर्स भी है, रिवाइज कोर्स भी है और रियलाइजेशन कोर्स भी। अब जिसको हम सब जनरल रीति से जानते हैं कि जब बाबा व्यक्त हुए तब साकार बाबा की मुरलियां हमको रिवाइज होकर के मिली। आप वर्ष में एक मुरली 18 जनवरी सुबह साकार बाबा की मुरलियां सुनते हैं। मैं तो अपनी दादियों को दिल से थैंक्स देती हूं, और जिस दिन सुबह को वो अमृत वेले मुरली की क्लास में, सुबह की क्लास में मुरली पढ़ती हूं, तो मुझे वो चीज सामने याद आती है कि सारा वर्ष हम सब मुरलियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, औरों को सुनाते भी हैं। सबका अपना अपना ड्रामा में सेवा का रोल है या जो कुछ भी है, लेकिन हमारी दादियों को देखिए, मुरली स्वयं 3-4 बार 5 बार पढ़ती हैं, क्लास में सुनाती हैं, सारे दिन के अंदर जो पत्र लिखती हैं उनमें भी मुरली का पॉइंट होता है, और फिर जब वो किसी से मिलती हैं दिन भर के अंदर, मुरली के पॉइंट को लेकर के उस दिन मिलती हैं। सारे वर्ष की मुरलियों का सार बुद्धि में रख करके दादियों का ये कोशिश होता है कि वर्ष के अंदर बाबा ने जो विशेष धारणाएं, विशेष पुरुषार्थ, विशेष स्वरूप बनने के लिए या त्याग और तपस्या करने के लिए या धारणा करने के लिए जो भी बाबा ने इशारा दिया हो, 18 जनवरी को उनको वो सार रूप में मिल जाना चाहिए। आप मार करके देखिए, जब से हमें अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू हुआ और 18 जनवरी जब हमारे सामने आई, 1 जनवरी 1970 की उस मुरली से और अब तक की मुरली को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे वर्ष की मुरलियों की जो सार है, धारणा का हो, योग का हो, ज्ञान का हो, वो सब दादियां ध्यान में रख के हमको देती हैं कि सारे वर्ष का सार इनके पास आ जाए, तो इनको लगे कि अभी हमें इस असार संसार से सार रूप में स्थित होकर के, अपने स्वरूप में स्थित होकर के, विश्व को साक्षात्कार करा के, बाबा को प्रत्यक्ष करके वापस घर जाना है। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे, एक है हम साकार बाबा की मुरलियों को रिवाइज करते हैं, दूसरा है इसके साथ साथ जब हम अव्यक्त बाबा की रियलाइजेशन की मुरली सुनते हैं तो उस रियलाइजेशन की मुरली से हमको लगता है जो चीज हमको चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई समझता है मेरे में सहन शक्ति की कमी है, और जब बाबा की सहन शक्ति के लिए एक वरदान बाबा का हम सुनते हैं कि बच्चे सहन करना कोई झुकना नहीं है, सहन करना कोई मरना नहीं है, लेकिन सहन करना है प्यारे बाबा की आज्ञा का पालन करना है। तो जब सिर्फ सहन शब्द को हम प्रयोग करते हैं तो कहते बहुत सहना पड़ता है, बहुत भारी काम लगता है, इसमें कई निराश भी हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं, डर भी जाते हैं, कई तो कहते छोड़ भी देते हैं ज्ञान को, नहीं सहन कर सकते। लेकिन जिस समय आत्मा को यह बात याद आ जाए, सहन करना कोई झुकना या मरना नहीं है, यह सहन करना नहीं है, सहन करना है प्यारे बाबा की आज्ञा को पालन करना है। तो बाप की आज्ञा का पालन बच्चे को करने में क्या कठिनाई है? क्यों? बाप अगर बच्चे को किसी आज्ञा का पालन करने को कहता है, बाप के पास वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि वो उसको संभाल सकेगा। अगर बच्चे को उस आज्ञा के पालन करने के रास्ते में कुछ कठिनाइयां आएंगी, कुछ विघ्न आएंगे, कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ समस्याएं आएंगी, वो सामर्थ्य हर लौकिक बाप के पास भी होता है, तो अलौकिक और पारलौकिक बाप के पास वो सामर्थ्य नहीं होगा। जो चीज बाबा ने हमको आज्ञा के रूप में सहन करने को कहा है वो क्या कठिन होगी? नहीं, कभी नहीं हो सकती। ये बात हमें सदा याद रहे। तो संगम युग में जो हम प्राप्ति और भाग्य को भूल करके सहन करने को आगे रखते हैं, चाहे परिवार के बीच में बैठ के सहन करना पड़े, चाहे अलौकिक जीवन में जब समर्पण हो जाते वो सहन करना पड़े, चाहे व्यापार में व्यवहार में नियमों को लेकर के सहन करना पड़े, कहां भी कुछ करना पड़ता है, कहां भी जसदा याद रखो, जिसने ये आज्ञा दी है उसने वो शक्ति भी दी, उसके पास सामर्थ्य है कि उसकी आज्ञा के अनुसार मैं कदम उठाऊंगी या उठाऊंगा। वो संभालने वाला बैठा है, जिम्मेवार वो है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मुझे जो कहा गया मुझे करना है। अगर इतने निश्चय से हम बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि जो बाबा हम में भरना चाह रहे हैं वो हम में भर रहा है। सिर्फ कुछ समय के लिए या कुछ बातों के लिए या कुछ लोगों के साथ के लिए नहीं बाबा भर रहा है, वो हर समय के लिए भर रहा है। जिसका आज तक गायन और पूजन जड़ चित्रों के रूप में हो रहा है, मंत्रों के रूप में हो रहा है, श्लोकों के रूप में हो रहा है, जिसका आज कलयुग के अंत तक गायन हो रहा है, संगम पर हम स्मृति स्वरूप होकर के उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कल भी हमको रतन मोहिनी दादी जी सुना रहे थे कि हमें जो बाबा कहता है कि बच्चे भक्ति सारी हूबहू तुम्हारी ही यादगार है जो तुमने संगम पर किया है। तो दादी जी अभी जो इलाहाबाद में कुंभ का मेला चल रहा है, दादी जी होकर के आए और उन्होंने देखा जो बाबा कुंभ कहता है, मिलन कहता है, वो नदी में जाके नहाने को कुंभ कहते हैं, लेकिन जब दादियों के पास सन्यासी गुरु वो लोग मिलने के लिए आते हैं तो उनको अनुभव होता है हमें उस नदी में नहाने से जितना अपनी पौराणिक रीति के अनुसार प्रचलन के अनुसार सुख मिलता है उससे कहीं सुख ज्यादा हमें दादियों के मिलन से मिलता है। रियल कुंभ में ये अनुभव होता है। कल कितने प्यार से दादी जी बता रहे थे कि रियली हम लोग तो छोटे छोटे ज्ञान में आ गए, लेकिन आज जब ज्ञान की प्रत्यक्षता और बाबा को महावाक्यों की प्रत्यक्षता देखते तो दिल से बार बार बाबा के लिए निकलता है, कमाल है बाबा आपकी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। तो इसी प्रकार अगर हम देखें जो हमारे दो कोर्स एक साथ चल रहे हैं, एक रियल कोर्स जो रिवाइज होकर के साकार बाबा की मुरलियों का चल रहा है और एक अव्यक्त मुरलियां जो कि रियलाइजेशन के रूप में हमारे पास आ रही हैं। परंतु अभी हम 5-6 साल से आने वाले भाई बहनों के भाग्य की इतनी सराहना करती हूँ, इतनी सराहना करती हूँ, थैंक्स है। वो किस समय बाबा के पास आए, आप जब एक कोर्स में उन्हें सारे कोर्स मिल रहे हैं, आप कहेंगे कैसे एक कोर्स में सारे कोर्स मिल रहे हैं? आप प्रैक्टिकल देखिए, इस समय साकार बाबा की वह मुरलियां जब बाबा लास्ट में 3-4 वर्ष संपूर्णता के थे और सभी को अनुभव होता था उस समय कि जैसे हमारे महाभारत के अंदर वर्णन आता है लास्ट में युधिष्ठर इशारा करत आओ मेरे पीछे चले आओ, ऐसे बाबा ने जो अपनी स्थिति दादियां सुनाती हैं कि बाबा ने जो अपनी स्थिति बनाई, बाबा के पास हम लोग जाते थे, बाबा से बात करते थे, लगता था बाबा हमारी बात सुन नहीं रहा है, लेकिन जब हम चुप हो जाते थे और बाबा जो हमारी बात का उत्तर देते थे और हम उसको कार्य में लाते थे, वो ठीक होता था। तो हम सोचते थे ये क्या है, बाबा ने हमारा सुना तो सारा नहीं, लेकिन बाबा ने जो उत्तर दिया उससे जो हमने कार्य किया वो 100% सफल हुआ, राइट हुआ, वो क्या चीज है। तो जिस स्थिति के, जिस पुरुषार्थ के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने अपनी अंतिम रियलाइजेशन स्थिति को बनाया और बच्चों को 2-3 वर्ष रह करके इस तन में उस कर्मातीत अवस्था का, संपूर्ण अवस्था का, फरिश्ता अवस्था का, शरीरी अवस्था का अनुभव कराया। आज अगर हम प्रैक्टिकल में देखें, जो आज बाबा की क्लासेस चल रही हैं, दादियां जो हमारे लिए पत्र पुष्प द्वारा धारणा की क्लासेस देते हैं, हमारे लिए प्रतिदिन एक वरदान और स्लोगन जाता है, क्योंकि जब बाबा में बाबा साकार बाबा की मुरलियां चलती थी, आप सब लोग क्या सुनते हो मुरली में, सबसे पहले मुरली का सार सुनते हो मीठे बच्चे से, उसके बाद क्वेश्चन और आंसर सुनते हो, फिर मुरली सुनते हो। तो कई भाई बहनों ने तो जैसे नियम बना दिया है कि हमको तो पका हुआ खाना मिल जाता है, पर हजम तो हमको ही करना है, वो भूल जाते हैं। तो डायरी पेन खोलते हैं और डायरी पेन खोल करके क्या करते हैं, आराम से मुरली का सार लिख देंगे, क्वेश्चन आंसर लिख देंगे, फिर डायरी खोलेंगे, धारणा जब लिख के जाएगी उसके बाद वरदान और स्लोगन लिख देंगे, बंद कर देंगे डायरी को। खाना पका हुआ तो मिल गया ना, लेकिन हजम तो आपको ही करना पड़ेगा, पके हुए खाने को चबाना तो आपको ही पड़ेगा, फिर 24 घंटे उसको रक्त बनने के लिए समय तो आपको ही देना पड़ेगा, वो कौन देगा, कोई और देगा क्या? खाना कोई भी पका के दे देगा, हजम तो आप करेंगे, खाएंगे तो आप, फिर उसको 24 घंटे शरीर में रख करके उसको रक्त तो बनने देंगे ना कि नहीं बनने देंगे। ठीक इसी ही प्रकार से ज्ञान भी भोजन इसी पे, बाबा कहते ना ज्ञान एक भोजन है, आत्मा का भोजन है, ज्ञान भी इसी प्रकार से भोजन है। हम सिर्फ ये ना समझ लेवे कि हमें सारी मुरली का क्वेश्चन आंसर के रूप में, सार के रूप में, धारणा के रूप में या वरदान के रूप में, नहीं। फिर भी आप जो डायरेक्ट बाबा के महावाक्य हैं मुरली में, उस एक एक महावाक्य को थोड़ा ध्यान से तो पढ़ो, ध्यान से तो सुनो, फिर उसमें से जो ना क्वेश्चन में आया है, ना सार में आया है, ना धारणा में आया है, ना वरदान में आया है, रोज अपनी बुद्धि को इतना चेतन और इतना विशाल बनाओ कि आप उससे एक पॉइंट लो जिसका आप खुद मनन करो। तो अपनी घोर तो नशा चढ़े जिसको बाबा कहता है, खुद चिंतन करो, फिर खुद उसमें से मक्खन निकालो और फिर खुद उसको अनुभव करके, धारण करके औरों को कराओ, आपको लगेगा मुरली मेरी, बाबा ने मेरे लिए कहा, आज बाबा ने मुझे ऐसा अनुभव कराया है, आज बाबा की मैंने इस चीज को गहराई से जाना है, समझा है। मैं कई समय से सोच रही थी या सोच रहा था कि ये चीज क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन आज जब मैंने इसका चिंतन किया, मनन किया, तो मैंने सोचा कि बाबा का इतना गहरा भाव है, इसके अंदर इतना सुख भरा हुआ है, तब आत्मा को लगता है कि सचमुच ज्ञानी तू आत्मा बनना है अगर मुझे, तो मुझे बाबा की एक एक पॉइंट का स्वरूप बनना है। हम सभी मास्टर ज्ञान सागर की तो डिग्री प्राप्त कर लिए हैं, आज 7 दिन का कोर्स कैसेट में, टीवी में, क्या क्या मीडिया के द्वारा मिलता है, हमें बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन कोई भी चीज हमारे अंदर जाने से ही हमको अंदर में प्राप्त होगी। अगर हमने उनको कान तक सुन लिया, मुख तक वर्णन कर दिया, आंखों तक देख लिया, या किसी को थोड़ा सा सुना दिया या पढ़ लिया, उतने तक सीमित रहने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि हम उसका मनन चिंतन करके खुद को धारण, प्रैक्टिकल जब हमारे फील्ड में वो बात आवे या नहीं आवे, इस पर मैं आपको मम्मा की, मीठी मम्मा की एक बात सुनाती हूँ। मम्मा हमेशा कहती थी, अगर अंतिम पेपर में पास होना है तो अंतिम कोर्स हमारा क्या है, तो मम्मा कहती थी अंतिम कोर्स किसको जो पेपर आएगा उसका वही अंतिम कोर्स होगा। समझो किसी के अंदर बहुत ज्यादा मोह है, किसी में भी हो, माँ में हो, बाप में हो, भाई में हो, पति में हो, बेटे में हो, किसी में भी हो, किसी में भी मोह हो, आप पहले से कल्पना करो, इमर्ज करो अपने आंखों के आगे। समझो अचानक मेरे पास सूचना आई है कि वो कहीं गया है, बच्चा पढ़ने गया है कि पति बिजनेस पर गया है, कुछ भी हो, जो भी हो, किसी का कोई संबंध हो, जो कुछ भी हो, वो वहां पर गया है और ये कह के गया मैं कल आऊंगा कि शाम को आऊंगा कि परसों को आऊंगा, जो कुछ भी आपका परिवार के अनुसार या व्यापार के अनुसार व्यवहार के अनुसार कारोबार हो, उस कारोबार में जो कुछ भी वो कह के गया हो, आपकी बुद्धि में टारगेट वो रहेगा, वो फलाना इस समय आएगा, वो फलाना इस समय आएगा, वो आपकी बुद्धि चल रही होगी, आपकी बुद्धि उस समय और कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है, वो आएगा और इस टाइम पर आएगा। लेकिन उस दृश्य को इमर्ज करो, उसके बीच में कोई आपको आकर के सूचना देता है या सूचना के साथ साथ अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी आपके सामने आती है, आपकी स्थिति क्या होगी, विचार करो। यही आपका अंतिम कोर्स होगा, यही आपका रियलाइजेशन होगा, जो आपने बहुत काल से आत्मा का अभ्यास किया है, नष्ट मोह बनने का अभ्यास किया है, अशरीरी बनने का अभ्यास किया है, सब मुख से बड़े प्यार से पूछते हैं, बाबा हाथ उठवाता है, मेरा तो एक शिव बाबा तो सब हाथ खड़ा कर देते, भाई कौन कहता है मेरा एक ही शिव बाबा सब कुछ और कुछ नहीं है, वो हाथ खड़ा करो जो कहते हैं मेरा एक ही शिव बाबा है। देखना फिर जितने और इतने सारे मेरे मेरे हैं उनसे कोई पेपर आएगा तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। तो इसके लिए मम्मा, प्यारी मम्मा हमेशा कहती थी कि जो चीज तुम्हारी अपनी छोटी सी भी वीकनेस कहीं पर है, उस वीकनेस को अपने सामने प्रैक्टिकल एक चित्र के रूप में चित्रित करो। अगर जिससे मेरा मोह है, मैंने सोचा भी नहीं था उसकी डेड बॉडी मेरे पास आएगी, सूचना आते आते बॉडी आ जाती है, समझो मुझे सोचने के लिए भी समय नहीं मिला कि क्या हुआ, उस समय मुझे बाबा याद आएगा, उस समय मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा का इतना ही पार्ट था, ये प्ले करके गई, अब मेरा पार्ट जो है वो मुझे प्ले करना है। कल्प 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 अनेक बार मैंने इस दृश्य को देखा है और देख करके इस पर विजय प्राप्त की है, मैं पास हुई हूँ, फिर अगले कल्प में भी यही रिपीट होगा। वह स्थिति ड्रामा की ढाल पर एक रस है, हलचल तो नहीं है, वो चीज हम अपने अंदर से देखें, तब हमें पता चले कि जो हमने साकार बाबा की रियल मुरली पढ़ी है, फिर अभी रिवाइज में हम पढ़ रहे हैं, और रियलाइजेशन की मुरली जो है अभी हम अव्यक्त बाबा से डायरेक्ट सुनते, तब हम कहेंगे कि हाँ हम कोर्स के साथ साथ चल रहे हैं। और जो अंतिम कोर्स रियलाइजेशन का होगा लास्ट में, जब हम इस चाहे कोई परिस्थिति नहीं हो, साधारण रीति से भी शरीर तो छूटेगा ना, वस्त्र तो परिवर्तन होगा ना, विनाश होगा तभी हम जाएंगे, ऐसी तो कुछ बात नहीं है ना, कोई कहा किस समय अचानक किसी भी कारण से जा सकता है ना, जाने का तो कोई डेट नहीं ना, जन्म की डेट है, मृत्यु की कोई डेट है क्या? इसलिए लाइफ इंश्योरेंस होता है, डेथ इंश्योरेंस होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है। कैलेंडर में आप क्या देखते हो? जन्म तिथि देखते हो ना, मृत्यु जब हो जाती है तब कहते हो जाती है, तब कहते हाँ भाई इस डेट में इसकी मृत्यु हुई थी। तो रियली जो कुछ भी है वो उत्पत्ति का ही सब कुछ है, विनाश का इतना महत्व नहीं है जितना उत्पत्ति का महत्व है। विनाश नवीनता के लिए है, विनाश दुख के लिए नहीं है, विनाश परिवर्तन के लिए है, विनाश होपलेस होने के लिए नहीं। तो इस प्रकार का जो बाबा हमारे को अनुभव कराते हैं और सुनाते हैं, वही है हमारा अंतिम कोर्स, जिस समय जो मेरा अंतिम पेपर होगा मुझे लास्ट में याद रखना है, मेरा अंतिम रियलाइजेशन कोर्स है अंत मते सुगते। अंत में मुझे कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, स्थान, पोस्ट, पोजीशन, रूप, रंग कुछ भी चीज याद नहीं आवे, कैसी भी परिस्थिति में कहां भी हूं, मुझे सिवाय एक बाबा के और कोई दूसरा याद ही नहीं आवे, ये पुरुषार्थ हमेशा हमारा अंतिम कोर्स का अंत मते सोगते। ये हमारा बहुत काल का जब पुरुषार्थ होगा, जिसका जब ईश्वरीय जन्म हुआ उसका तभी वही बहुत काल है। बहुत काल आप नहीं सोचो, बैठने लगो सोचने लगो अरे हम तो अभी इतने बाद में आए हैं, 1937 में आते थे, 1937 में आते थे 76 साल तो आपके शरीर की आयु ने, उससे पहले आप कहाँ थे आपको मालूम है, क्या पता यज्ञ से ही गए हो किसको मालूम है। इस प्रकार से वो सब बातों को सोचने में हमने साकार बाबा को देखा नहीं। कोई भी चीज देखने की क्या है, इन आंखों से ज्यादा देखने की चीज है हमारी बुद्धि, जिसको हम रियलाइजेशन कहते हैं। जिन्होंने साकार बाबा से पालना ली वो छोड़ के चले गए, जो अभी अव्यक्त पालना में आ रहे हैं वो आगे जाते हैं, जिनको बाबा कहता है विदेशियों को क्या बोलता है, डबल पुरुषार्थी। अभी डबल विदेशी नहीं बोलता है बाबा, डबल पुरुषार्थी बोलता है। तो जिस चीज का भी संबंध है हमारे अंतर से, बुद्धि से, इन चरम चक्षुओं से भी ज्यादा, जब हम तीसरे चक्षु से या बुद्धि के बल द्वारा जो चीज देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, वही हमारा अपना हो जाता है। अब तीसरा कोर्स जो इस समय हमारा चल रहा है, एक है रियल में ही, रियल कोर्स में ही बाबा ने रिवाइज कोर्स कराया और रियलाइजेशन कोर्स कराया। जैसे बाबा ने अपनी स्थिति बनाई वैसे बच्चों को भी स्थिति बनाई, योग द्वारा, मुरली द्वारा, सकाश द्वारा। मुरली से पहले आधा पेज जो सुनाता है बाबा, या जब बातें करते थे बच्चे तो बाबा वो अनुभव, अभी भी आप देखेंगे, आप जब मधुबन में आते हैं बहुत सारी बातें सोच करके आते हैं, हमको जिससे भी मिलेंगे हम ये बात करेंगे। अभी तो चलो वो समय ही चला गया, लेकिन बीच के काल का समय बता रहा हूँ। लेकिन आप आते ही पहला काम नहा धो के क्या करते हो, जब आप मधुबन में आते हो नहाना धोना करके पहला काम क्या करते हो, खाना खाते हो कि बाबा के कमरे में जाते हो, हाथ खड़ा करो, जो कहते हैं हम जब शांति वन में पांव रखते हैं नहाना धोना करके पहले बाबा के कमरे में जाते हैं, हाथ खड़ा करो, हाथ जोर थोड़ा हिलाओ मैं देखूं सभी को, सब पक्का, कोई भी नहीं है इस सभा में ऐसा जो नहा धो के पहले खाना नहीं खाता है, बाबा के कमरे में नहीं जाता और खाना खाता, कोई नहीं है। आप तो अच्छा, अभी बाप दादा आएंगे तो बड़ा खुश होगा आप सभी को देख करके कि मेरे बच्चे तो बड़े पक्के हैं, मेरे पर बलिहार हैं, क्योंकि जिस जोन में आप आए हो इंटरनेशनल जोन में, ये जोन सब दूर दूर वाले हैं। तीन दिन ठंडा खाना खा के दिल्ली वालों को तो अच्छा ना, रात को राजधानी में बैठे सुबह को पहुंच गए, दिल्ली वाले तो बिल्कुल नजदीक हैं, और उससे नजदीक तो गुजरात वाले, अहमदाबाद वाले, और उससे नजदीक तो राजस्थान वाले हैं। लेकिन जो इतनी दूर दूर से आए, देखो नेपाल कहाँ, तमिलनाडु केरला कहाँ पर, बंगाल बिहार आसाम उड़ीसा कहाँ पर, ये जो जोन है सेवा का जिनका टर्न है, ये तो कितना दूर दूर से आए हुए हैं। अगर ये तीन दिन पूरा ठंडी में ठंडा खाना खा के फिर डायरेक्ट बाबा के कमरे में जाते, तब तो बाबा के पास जाते ही भाई आप सबकी थकान उतर जाती है बाबा के कमरे में जाकर। और जितनी बातें घर से सोच के आए हो, हम जा रहे हैं ये बाबा को कहेंगे, बाबा के कमरे में कहेंगे, बाबा के सामने, आधी बातें आपका भूल जाता है ना बाबा के कमरे में जाके, जो जितनी बातें सोच के आते हो उतना याद रहता है, आधा भूल जाता होगा जरूर। जो सीधा नहा करके बाबा के कमरे में जाते हैं, जितना जो कुछ मन में सोच के आते होंगे ना, आधा जरूर उनको भूल जाता होगा, भूल जाता है ना, जो कहते हैं हाँ भूल जाता है वो हाथ खड़ा करो, हाँ। देखा। और उसके बाद जो आधा आपके पास रह जाता है, जब आप कोई सा भी क्लास करते होंगे या सुबह को मुरली सुनते होंगे, आधा उसमें उत्तर मिल जाता होगा, मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। बाकी जो और 1/4 रह जाता होगा, जब जिस लिए आप खास आते हो, किस लिए आते हो, किस लिए आते हो, बाबा से मिलने के लिए, अव्यक्त मिलन मनाने के लिए। क्यों आप सबके घर में टीवी में बाबा दिखाई नहीं देता? सेंटर में किस किस के सेंटर में बाबा को देखते भी हैं और सुनते भी हैं, वो हाथ खड़ा करो। क्या पीस ऑफ माइंड चैनल से सुनते हो, जिससे भी सुनते हो, देखते हो, सबके पास। फिर और यहाँ क्या करने के लिए आते हो, यहाँ क्या करने के लिए आते हो? देखो, पर्दा पर्दा ही है, वो पर्दे में भले वो चेतन से हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको जड़ कहेंगे, सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के जब सामने बाबा को सुनते हैं और देखते हैं, बाबा चेतन में हमारे सामने हैं, वो जो हमको रियलाइजेशन होता है, सकाश होता है, वो टीवी हमको सकाश नहीं दे सकती है। दे सकती है टीवी सकाश? टीवी आपको दृश्य दिखा सकती है, आपके आंखों को टच कर सकती है, आपके कानों को टच कर सकती है, थोड़ा सा आपके हृदय को टच कर सकती है, लेकिन अंतर आत्मा में चला जाए, आपको सकाश करा दे टीवी, वो काम वो नहीं कर सकती। अगर वो काम साइंस कर ले तो फिर साइंस से साइलेंस आगे क्या हुआ? अगर वो काम साइंस कर देवे, टीवी कर देवे, तो साइलेंस की तो वैल्यू कम हो जाएगी ना। सदा आप देखेंगे चेतन जड़ से आगे ही है, साइलेंस साइंस से आगे ही है। सदा किसी भी जगह में आप देखो, किसी भी रूप में देखो, कैसे भी देखो, तो जो हम खास मधुबन में आते हैं, सिर्फ हम मधुबन में इसलिए नहीं आते कि बाबा के बेहद घर में जा रहे, अपना स्थान चेंज करें, चैतन्य में बाबा स्वयं यहाँ आता है, सामने बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट दृष्टि देता है, उस दृष्टि में उस वाणी से भी ज्यादा शक्ति होती है जिसमें वो अपने बच्चों को सर्वशक्तियां दे देते हैं। जैसे हम सब सुनते हैं, हमारी बड़ी दादी से जब अनुभव पूछे थे, दादी वो अनुभव सुनाओ, जब बाबा गए और आप बाबा के पास थे, बाबा ने हाथ में लेकर के हाथ लिया तो बाबा ने क्या अनुभव कराया, इसी समय जो 10 मिनट 15 मिनट आप ध्यान से देखिए, आप भूल जाइए आपके साइड में कौन बैठा, आपके आगे कौन बैठा, आपको पीछे सीट मिली कि आपको आगे सीट मिली, आपको सोफे पे मिली कि कुर्सी पे मिली, कि थोड़ा नजदीक मिली कि थोड़ा दूर मिली, इन सब बातों से आप परे हो जाइए। आप देखिए मैं अकेली हूँ, ठीक बाबा के नजदीक हूँ, या अकेला हूँ बाबा के सामने, आपको अनुभव होगा जो बाबा ने आपको देना था सब दे दिया, और आपने भी जो बाबा से लेना था, लेकिन आप अकेले हो जाओ, सबके बीच से अकेले हो जाओ, इस शरीर से भी अकेले हो जाओ, फिर आप अनुभव करो। जो शब्द तो कोई मिस भी हो जाएगा, जैसे अभी हम लोग बूढ़े बूढ़े हो गए, कुछ सुनता है कुछ नहीं भी सुनता है, लेकिन शब्द मिस हो सकता है, भावना मिस नहीं हो सकती। भावना आपकी इस समय के लिए नहीं, कई दिनों के लिए, सदाकाल के लिए, वो आपके संकल्प की रील में लिपट जाती है। वो जब आपको वह दृश्य ये सामने आएगा, वो सिरहन आपको पैदा होगी, मुझे बाबा से ये अनुभव हुआ था, बाबा ने मुझे रियलाइज कराया था। कई लोग कहते हम कभी भी अशरीरी नहीं हो पाते थे, लगा जैसे बाबा मेरे को दृष्टि दे रहा है, मेरे को ही दृष्टि दे रहा है, खाली मेरे को ही दृष्टि दे रहा है, जैसे बाबा मुझे खुद डिटैच कर दिया, मैं कभी डिटैच होने का मुझे अनुभव ही नहीं था, बाबा ने मुझे डिटैच कर दिया। अब उस अनुभव को, उस संकल्प को बार बार रिवाइज करो, तो जो चीज बार बार रिवाइज करोगे, सत्यता को, रियलिटी को बार बार रिपीट करने से, अर्थात रिवाइज करने से, कुछ समय में वो रियलाइजेशन में पहुंच जाते हैं। ठीक इसी ही प्रकार से अब ये जो टॉपिक है, अंतिम कोर्स रियलाइजेशन कोर्स आज का जो टॉपिक है, तो फर्स्ट कोर्स से हमारा रियल कोर्स, उसमें भी तीनों कोर्स चले जैसे आपको सुनाया, सेकंड कोर्स से हमारा रिवाइज कोर्स, उसमें भी तीनों कोर्स चले, रिवाइज भी तो रियल को लेकर रिवाइज हो रहा है ना, और उसके साथ साथ उस रियलाइजेशन कराने के लिए हमारी दादियों ने ये धारणा वरदान शुरू करा कि भाई कई लोग समझ सकेंगे या नहीं समझा सकेंगे। देश विदेश में सेवा पहुंच गई जहां हिंदी नहीं जानते हैं, हमारी छोटी छोटी बहनें आती हैं जहां तक बहनें भी नहीं पहुंच पाती हैं, तो दादियों ने कहा मुरली का सार तो सबके पास आ जाए, तो दादियों ने उसमें से फिर रियलाइज कराने के लिए क्वेश्चन आंसर धारणा वरदान ये सब शुरू करा। अब ये तो मुरली रोज की रोज सुनते भूल जाते हैं, लेकिन कितना अच्छा काम हमारी दादियां करती हैं, हमको होमवर्क भी दे देती हैं। ये जो अव्यक्त इशारे या पत्र पुष्प सेंटर पर जाता है, आप सब सुनते होंगे पढ़ते होंगे या प्रतिदिन क्लास में सुनाया जाता है या कहाँ कहाँ सारा एक दिन सुना देते हैं, सबका अपना अपना विधि है, लेकिन सभी के सेंटरों पर सुनाते जरूर है ये मुझे मालूम है, लेकिन वो हमारा सारे महीने का होमवर्क होता है। एक ही पॉइंट के ऊपर में 18 पॉइंट हमको मिलती हैं। अगर कोई कहे मुझे मनन करना नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आने दो, लेकिन जो मनन करा हुआ आपको मिला उसको याद तो कर सकते हो, याद तो रख सकते हो। तो एक ही पॉइंट पर 18 पॉइंट हमको मिलती हैं, हम 18 दिन के अंदर उनको सुनते हैं, फिर क्या और बाकी जो हमारे पास 12 दिन रह जाते हैं क्या हम उसको स्वरूप में ला नहीं सकते? और फिर तो नया महीना शुरू होने से फिर हमको मिल जाता है। तो कितना ना हम ज्ञान को अपने अंदर में समा लेवे, कितना ना ज्ञान का हम स्वरूप बन जाएं, अपने नैनों द्वारा, भावना द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा औरों को हम दे दें, अगर एक एक बाप समान बन जाए तो सबको सब में, विश्व को सब में क्या दिखाई दे, बाप दिखाई दे, तो बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा। तो अंतिम कोर्स जो रियलाइजेशन कोर्स है, हमको स्वयं को संपूर्ण बनाने के लिए भी है और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए भी है। लेकिन रियली देखा जाए जो रियलाइजेशन कोर्स है वो किस लिए है, एक चीज आप अनुभव करो। बाबा जब सृष्टि पर आया तो मैं आया हूं तुमको नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने या मनुष्य से देवता बनाने। तो मनुष्य और देवता में जो मोटे रूप का अंतर हम सब समझते हैं, समझाते हैं औरों को सुनाते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर क्या होते हैं, कोई कोई गुण होता है, कोई ऐसा संसार में चैतन्य आत्मा जिसने मानव जीवन मानव वस्त्र धारण किया हुआ हो उसमें कोई गुण नहीं हो, नहीं हो सकता। क्यों? वो गुणों के सागर की रचना है। रचयिता का रचना में कोई भी गुण नहीं आवे ये हो नहीं सकता। हाँ है, परसेंटेज कम है, किसी में इतनी कम परसेंटेज है जो होते हुए भी पता नहीं चलता, लेकिन है जरूर। विश्व की कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर कोई भी बाबा के गुणों में से कोई गुण ना हो, नहीं है। परमात्मा की संतान है ना, बाप का गुण बच्चे में नहीं होगा तो और किस में होगा? जरूर होगा ना, मनुष्य आत्मा में होगा ना। लेकिन बाबा किस समय आया? एक समय इस धरा पर ऐसा था जब चैतन्य में मनुष्य आत्माएं थी लेकिन सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी, वो देव समान थी। दूसरे शब्दों में जिनको आज मनुष्य कहता है ये भगवान है, भगवान भगवती, लक्ष्मी नारायण को बोलते नहीं भगवान भगवती, अर्थात संपूर्ण परमात्मा का स्वरूप। हमारे ब्रह्मा बाबा को क्या बोलते हैं ज्ञान काल में, भक्ति काल में, नेक्स्ट टू गॉड। माना बाबा और बाबा के बीच में और कोई नहीं, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई शक्ति है, ना कोई हस्ती है। दुनिया में कहते ना ये फलाना ऐसा आसामी है, फलाना ऐसा आसामी है, बाबा और बाबा के बीच में कोई हस्ती नहीं दूसरी, कोई व्यक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं, ना शारीरिक शक्ति, ना मानसिक शक्ति, ना आर्थिक शक्ति, ना ही कोई वैज्ञानिक किया, आजकल जो मिसाइल एनर्जी शक्ति जो चल रही है वैसी भी कोई शक्ति नहीं। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बाप समान, जो कि आज हम सब अनुभव करते हैं, विश्व में इस एक आत्मा का ही रोल है जो इस साकार वस्त्र को छोड़ करके अव्यक्त वस्त्र को प्रकाशमय शरीर को धारण करके आज कितने वर्ष हो गए बाबा पार्ट प्ले कर रहा है, कितने वर्ष हुए बाबा को अव्यक्त हुए भाई, 44 हुए ना, 44 ईयर से बाबा पार्ट प्ले कर रहा है ना, ये पार्ट किसी और का है, ये पार्ट किसी और का है, कोई नहीं। और अव्यक्त ब्रह्मा के बाद जो नारायण बन गए इन दोनों के बीच में भी कोई नहीं। और जब नारायण बन करके वापस से भक्ति शुरू होगी तो भी पहली भक्ति के बीच में और ज्ञान के अंत में भी तीसरा कोई नहीं। आप सारा रोल देख लीजिए बाबा का, सारे ड्रामा का चक्कर आप आराम से देख लीजिए, आप रियलाइज कीजिए आपका भी ऐसे ही पुरुषार्थ हो, मेरे और बाबा के बीच में कोई ना, बस बाबा जो मुझसे चाहता है मैं वो बाबा के समान बन जाऊं, बन के दिखा दूं, यही मेरा पुरुषार्थ। आप सारा ड्रामा देखिए, जब अभी ब्रह्मा बाबा ने अपने बीच में ना संबंध को रहने दिया, ना धन को रहने दिया, ना बुद्धि को रहने दिया, ना पोस्ट पोजीशन को रहने दिया, ना परिस्थितियों को रहने दिया, बाबा ने अपने और बाबा के बीच में किसी को स्थान नहीं दिया, इसीलिए फर्स्ट नारायण हुआ, इसीलिए भक्ति में फर्स्ट विक्रमादित्य हुआ, इसीलिए संगम पर फर्स्ट आदिदेव, एडम, फर्स्ट मैन, जो कुछ भी बोलो। और मनु की कल्पना में भी पहला मनु वही बना। तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए, जब हमारे और बाबा के बीच में कोई भी चीज ना रहे, कोई भी चीज ना रहे माना कोई भी ऐसी सीमा ना हो, ये होने से ये होगा, तब हम कहेंगे हम अंतिम रियलाइजेशन कोर्स करके नजदीक जा रहे हैं। अब हमारे को इतने सारा ज्ञान हम याद नहीं रख सकते, इतनी बातें याद नहीं रख सकते, लेकिन दो बातें तो हम याद रख सकते हैं ना, उन दो बातों को आप गहराई से देखो, बाबा हमें क्या बनाने के लिए आया, दो काम करने के लिए, एक तो बाबा आया हमको सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए, दूसरा सर्वशक्ति संपन्न बनाने के लिए। सत्युग में हम दो चीजों के आधार पर ही राज्य करेंगे, एक तो हम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न होंगे, ठीक है, और उसके बाद जो विश्व पर राज्य करने की शक्ति होगी, वो विश्व पर राज्य करने की शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, जो मर्यादाओं की शक्ति है, जिसको जिसमें सारी शक्तियां समाई हुई हैं, वह शक्ति और गुण, गुण और शक्ति, इन दोनों के आधार पर ही हम विश्व में राज्य करें। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कैसे प्रैक्टिकल बताती हूँ, देखिए। कई पूछते हैं बहन जी गुण और शक्ति में अंतर क्या है, बहुत अंतर है, कितने चीजें हमारे गुण ऐसे हैं जो शक्ति में परिणित होते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो नहीं होते, जो होते हुए मैं बात बताती हूँ। आप देखेंगे कितने गुण हैं जो डायरेक्ट हैं, वो डायरेक्ट शक्तियां बन जाती हैं, जैसे शांति एक डायरेक्ट गुण है। अब शांति स्थूल भी है, शांति सूक्ष्म भी है, लेकिन शांति एक शक्ति भी है, जिसको एकाग्रता की शक्ति के आधार पर मनुष्य जो चाहिए सो कर सकता है। कुछ समय पहले आपने एक चीज, बहुत दिनों की बात हो गई, बहुत समय की बात हो गई, देखा होगा यूरी गैलर करके, एक नाम सुना होगा, वो क्या करता था, हाथ पर मूंग रख के उसको अंकुरित करके पौधा पैदा कर देता था, चाबियों को जेब में रखी चाबियों को मोड़ देता था। जब दादी जानकी के साथ एकाग्रता की शक्ति पर बात आई, मनो के संकल्पों को दादी ने स्थिर कर दिया, लोगों ने शांति का अनुभव किया जो कभी नींद में भी नहीं किया था, नींद की गोली लेकर के भी नहीं करा था, तो वो जो संपूर्ण पवित्रता और शांति की शक्ति थी, लोगों के मनों को शांत कर दिया, वो नहीं कर सकता था। इसलिए परमात्मा द्वारा मिली हुई पवित्र और संबंधमय शांति जो शक्ति है एकाग्रता की, उससे ही सारी शक्तियां एक मिल जाती है आत्मा को। तो शांति अपने में गुण तब तक है जब तक आपके पास 50% अर्थात 50% कहने का मेरा मतलब है, आपने मुरली सुनी आपको बड़ी शांति मिली, आज विशेष योग भक्ति का प्रोग्राम रहा, आपको बड़ी शांति मिले। आज कोई आपके पास में आई, कोई बहन, कोई दादी, या आप कहीं गए जहां कोई प्रोग्राम था, आपको बड़ी शांति मिली। आज देखा वो प्रोग्राम, वो क्लास, वो मुरली, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। परंतु कुछ भी नहीं है आपके पास बाहर का साधन, आप अमृत वेले उठते हैं, प्यार से बाबा को याद करते हैं, आप साइलेंस में, बाहर की साइलेंस में बैठे हैं, लेकिन किसी एक सामान को लेकर के आप बैठे। ऐसे कल की मुरली मुझे बाबा की बार बार, आज कई बार मुझे याद आया कल का बाबा का वरदान, बच्चे ज्ञान को रमणीकता से लो, कठिन करके नहीं लो। जैसे मैं अपने बच्चों के खातिर कभी धोबी बन जाता हूँ, कभी सुनार बन जाता हूँ, कभी सर्वेंट बन जाता हूँ, नहीं तो हमको हंसी आती नहीं, अरे बाबा परम, हर चीज में परम है, वो हमारे खातिर धोबी बनता है, सुनार बनता है, सर्वेंट बनता है, ये कहाँ तक ठीक है। लेकिन हम देखे बाबा क्यों, बच्चे कैसे भी करके समझ सके मेरे इस पार्ट को और मुझसे ले सके, मेरे जैसा बन सके। ठीक इसी प्रकार से बाबा भी ने भी कल हमको कहा, तुम कभी आर्टिस्ट बन जाओ, एक मूर्तिकार हो ना, अपनी मूर्ति भी बना रहे हो, औरों की भी मूर्ति बना रहे। एक मूर्तिकार की बात बताता हूँ, सुनाती हूँ। उसने एक मूर्ति बनाई बहुत अच्छी, और उसने एक जैसी 16 बनाई, तो सब उसकी इतनी महिमा करने लगे, कोई मूर्ति किसी से अलग नहीं, लेकिन इसमें रियल कौन है उस 16 के अंदर किसी को पता नहीं। वो कहता था कोई नहीं पहचान सकता था, लेकिन कला का जब अभिमान आ जाता है तो कला क्या करती है, नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है। उसको अभिमान आया तो किसी ने कहा इसमें एक भी रियल नहीं, तो कलाकार ने कहा कैसे नहीं इसमें रियल है, वो बोल पड़ा तो पकड़ा गया, तो पता चला कि रियल कहाँ पर है। तो समझा, तो कला का कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहता है, अगर तुम्हारे अंदर भाषण करने की कला है, तुम्हारे अंदर ज्ञान देने की कला है, या तुम्हारे अंदर योग की गहराई में जाने की कला है, कोई भी है बाबा से मिली है ना, जब उस कला को बाबा से मिली हुई देन करके औरों के लिए यूज करते हो, और हर परिस्थिति में वो आपके पास रहती है, वही शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो, आपकी शांति भंग नहीं होवे, तब हम कहेंगे आपने शांति के गुण को शक्ति में परिणित करा दिया। समय हो गया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं समाप्त करती हूँ। कई गुण डायरेक्ट हैं, कई गुण मिलकर के आते हैं। जैसे सुख और शांति, जब ये दोनों मिलते हैं तो आनंद तैयार होता है। हम लोग दुनिया में जब आनंद शब्द को यूज करते हैं तो पदार्थों से लेते हैं, आज ये चीज खाई बड़ा आनंद आया, ये चीज देखी बड़ा आनंद आया, फलानी जगह गए बड़ा आनंद आया, फलाने से मिले बड़ा आनंद आया। लौकिक दुनिया के अंदर उनको पदार्थों से, व्यक्तियों से, वैभव से, माना इस भूलोक से उस शब्द को प्रयोग करते हैं। जब हम बाबा के बन जाते हैं तो जब हम आज मुरली सुनी बड़ा आनंद आया, भाई क्या बात थी, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा कमी है ज्ञान का, चिंतन करने का, तो आज बाबा ने चिंतन की इतनी सुंदर विधि बताई, ऐसे ऐसे तुम सोचो, मुझे आज की मुरली सुन के बड़ा आनंद आया। तो हमने क्या करा, वो बाबा की मुरली से योग में बैठे आज बड़ा आनंद, क्यों, मन भटका नहीं, एकाग्र हो गया, आज बड़ा अच्छा योग लगा, बड़ा आनंद आया। लेकिन ये सुख और शांति, ज्ञान का सुख है, एकाग्रता की शांति है, ये दोनों मिलकर के जो आनंद प्राप्त हुआ वो इन दोनों के आधार पर प्राप्त हुआ, लेकिन ये आनंद शक्ति का बन जाता है, जिसको दो शब्द में प्रयोग करते हैं, एक तो अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, दूसरा परमानंद शब्द का प्रयोग होता है। ये दोनों शब्द हम भक्ति मार्ग से भी सुनते चले आ रहे हैं, किसने भक्ति मार्ग में अतीन्द्रिय सुख का शब्द नहीं सुना, सुना है, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख क्या होता है मालूम नहीं है। जितेंद्रिय होने से ही अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, उसके बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से साधनों द्वारा जो चीज प्राप्त हो रही है उसके जब हम स्वरूप बन जाते हैं तब परमानंद प्राप्त होता है। अर्थात बस जब मैं चाहूं, जितना समय चाहूं, जिसको बाबा हमको कमेंट्री कराता है, कौन हो, मैं परम धाम में रहने वाली आत्मा, फिर नीचे आओ, मैं फरिश्ता हूँ, फिर साकार लोक में आओ, अपने स्वर्ग में जाओ। बाबा हमें पांचों स्वरूपों का अनुभव कराता है, कराता नहीं बाबा हमको पांचों स्वरूपों का कॉमेंट्री कराता है, हम अनुभव करते हैं, कॉमेंट्री कराते हैं हम अनुभव करते हैं। अर्थात मन और बुद्धि के द्वारा जो चीज हम बार 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 रियलाइज करते जाते हैं करते जाते हैं, और जब उसमें हम स्थित हो जाते हैं फिर हमें बार बार रिपीट करके रियलाइज करने की जरूरत नहीं, सोचा और हो गए। और जितना टाइम चाहिए हम उसमें, समझो अभी मैंने अनुभव करा मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, वो फरिश्ता स्वरूप में मैं जितना समय रहना चाहूँ उतना समय रह जाऊं, वो मेरा है परमानंद, अर्थात वो मेरी शक्ति। मैंने सोचा तो फरिश्ता स्वरूप, इमीडिएटली मैं साकार में आ गई, वो सोचा वहां तक ठीक है, वो गुण रहा, वो आपका शक्ति नहीं बना। तो जो पदार्थों से, व्यक्तियों से या ज्ञान की जो साधन है उनसे भी ऊपर होकर के स्वतः संकल्प में आते ही जो स्वरूप में आ जाते हैं, और स्वरूप बनने के बाद जितना समय चाहे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 1.5 मिनट आधा मिनट, आप जितना समय अपने सीमा को रख लीजिए, आप जितना समय उसको चाहें उतना समय आप उसके ऊपर नियंत्रण करके रह सके, वही आपकी शक्ति है। और यही अंतिम कोर्स है, हमें किसी को भी मालूम नहीं है कि हमारा लास्ट पेपर क्या होगा और कहाँ होगा और कैसे होगा, लेकिन किसी भी प्रकार का पेपर आएगा अंत में हमें एक बाबा ही याद रहे और दूसरा हमें कुछ भी याद ना आवे, इसका बहुत काल का जब हमको अभ्यास होगा तो वही अंतिम कोर्स हमारा, वही रियलाइजेशन कोर्स होगा। इसलिए बाबा कहता है जिसकी जिस समय जो कमजोरी है बहुत काल की, उसको अभी से ही मिटाओ, और अपने अनुभव के संस्कार को, चाहे फरिश्ता स्वरूप का हो, चाहे बिंदु रूप का हो, चाहे दैवी स्वरूप का हो, अपने जो भी ब्राह्मण स्वरूप का हो, संपूर्ण ब्राह्मण जिसको कहता है बाबा, बहुत काल से जब आप उसका अभी से ही अभ्यास करेंगे और उसमें सहज स्थित होना शुरू हो जाएंगे, वही आपका अंतिम रियलाइजेशन कोर्स होगा, और आप अतीन्द्रिय सुख और परमानंद की अनुभूति करते करते आप बाबा के पास, बाबा के समान बन करके पहुंच जाएंगे। ओम शांति।